आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है साइंस एंड टेक, और हम बात करेंगे थर्मल एनर्जी के बारे में। सबसे पहले वेलकम करते हैं अपनी एक्सपर्ट का। तो हमारे साथ बनी हुई है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर उदयना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
थैंक यू मैम। नमस्कार शिक्षार्थियों, जैसा कि मैम ने आज आपको बताया, आज हम लोग बात करेंगे थर्मल एनर्जी पे। हमने पिछली चर्चा में जब बात करी थी वर्क एंड एनर्जी की, तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी की बात करी थी, जिसमें से हमने बात करी थी कि हम लोग हर एक प्रकार की एनर्जी का एक एक चर्चा में उसे विस्तार से समझेंगे कि वो एनर्जी होती क्या है। तो उसी श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है थर्मल एनर्जी, मतलब कि तापीय ऊर्जा। आपने देखा होगा कि गर्मियों में आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, फिर आप अपने शरीर को ठंडक देने के लिए बार बार नहाते हैं, पंखे के नीचे रहते हैं, एसी चला के रहते हैं। सिमिलरली आप सर्दियों में जब ठंड महसूस करते हैं तो आप जो हैं वो गर्म कपड़े पहन के अपने शरीर की गर्मी को बनाए रखते हैं। तो ये जो थर्मल एनर्जी है, ये एक तरह से एनर्जी है जो कि हमें हॉट और कोल्ड, गर्म और सर्द दोनों चीज़ों को महसूस कराती है। तो थर्मल एनर्जी हम एनवायरनमेंट में भी महसूस करेंगे और हम अपनी बॉडी में भी महसूस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम गर्मियों में गर्मी महसूस करते हैं तो हम अपने कपड़े जो हैं सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि हमारे शरीर को ठंडक मिले। सिमिलरली सर्दियों में हम लोग जब हमारे शरीर को ठंड लगती है, हम ठंड महसूस कर रहे होते हैं, तो अपने शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए हम जो हैं वो ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे शरीर की गर्मी जो है वो बनी रहे। यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये हमारे डेली रूटीन में, हम लोग दैनिक जीवन में इसका प्रयोग जो है वो भरपूर मात्रा में करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम लोग इन जनरल टर्म्स कहें तो थर्मल एनर्जी तापीय ऊर्जा, दैट मीन्स तापीय ऊर्जा हिंदी में इज ऑल्सो कॉल्ड हीट, इसे हम लोग ऊष्मा भी कहते हैं। हम जो है ये जो थर्मल एनर्जी है या हम हीट की बात करें तो हीट हमें कहाँ से मिलती है? ये हीट अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, वातावरण की बात करें, तो जो सबसे बड़ा सोर्स है, हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़े थे और सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स था दैट वाज द सन, सूर्य। और हीट जो है वो हम सूर्य से प्राप्त करते हैं और हीट के साथ साथ हम प्रकाश भी प्राप्त करते हैं। परंतु अभी हम प्रकाश एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ तापीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ जो है वो हीट की बात करेंगे। ये हीट जो है हमारे कई तरह के कार्य करती है, जैसे कि हम कपड़े जब गीले हो जाते हैं या हम धोते हैं तो उन्हें सुखाती है, हम जब फसल बीजते हैं तो उन फसल के लिए वो जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको वहाँ पे वो मिलती है और जिसकी वजह से जो हमारी फसल है वो ग्रो करती है। पानी जो है वो बाष्पीकरण होता है इससे, और एक जो हमारा रेन साइकिल जो बनता है या वाटर साइकिल जो हमारा बनता है वो सन की वजह से ही बनता है, सन की तापीय ऊर्जा की वजह से ही बनता है। तो इसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे तापीय ऊर्जा के बारे में, क्योंकि ये हमारी लाइफ से बहुत ही अच्छे तरह से जुड़ी हुई है और इसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो बहुत बेटर और कंफर्ट वाली होती है। हीट एंड टेम्परेचर दो चीज़ें हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें समझने के लिए आप समझिए, देखिए आपने अपनी मम्मी को या अभी तो आप भी घर में पानी गर्म करना, चाय बनाना ऐसा काम करते ही होंगे, तो आपने कई बार महसूस किया होगा या आप अभी भी लेसन पढ़ने के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं कि अगर आप बकेट से पानी लेके उसे अपने किसी भी बर्तन में गर्म करने के लिए रख दें, अपने गैस पे या किसी और माध्यम से गर्म करें उसे,
तो आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात ये डिपेंड करता है कि आप कितनी हीट उसे देंगे। जैसे कि हम गैस की बात करते हैं, तो अगर आप सिम गैस पे पानी को गर्म करेंगे तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, आप फुल गैस पे पानी को गर्म करेंगे तो उसे कम टाइम लगेगा। तो जो थर्मल एनर्जी, जो तापीय ऊर्जा हमने उस स्टोव, उस गैस के द्वारा उस पानी को दी, उसकी वजह से वो जो पानी था वो गर्म हो गया। आप उसे महसूस करें तो आप देखेंगे कि पानी गर्म हो गया। अब आप देखिए, दो चीजें हैं कि आपने कितनी तापीय ऊर्जा दी उसके हिसाब से पानी गर्म होगा, दूसरा आपने कितनी देर तक तापीय ऊर्जा दी उसके हिसाब से पानी गर्म होगा। तो आपको, जब आपको सिर्फ गुनगुना पानी चाहिए होता है तो आप थोड़ी देर में पानी गर्म करके उसके हटा लेते हैं, जब आपको चाय बनानी होती है तो आपको पानी बॉयल करना होता है, तो आप जो है उस पानी को लगातार जो है वो तापीय ऊर्जा देते रहते हैं। जो आप तापीय ऊर्जा, जो ऊष्मा आप जो है उस पानी को दे रहे हैं वो है हीट, आप पानी को हीट कर रहे हैं। और जो जिस डिग्री तक मैंने कहा, पानी कभी आपको ठंडा लगेगा, कभी गुनगुना लगेगा, कभी तेज गर्म लगेगा, और कभी बॉइलिंग हो गया, तो वो जो आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस है या डिग्री ऑफ कोल्डनेस है, कोल्डनेस में भी देखिए जिस तरह से गर्म आपका न्यूट्रल से हायर तक है, वैसे ही आपका ठंडा भी न्यूट्रल से लोअर तक है। तो वो जो आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, दैट इज नोन एज अ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। अब ये बॉडी जो है कुछ भी हो सकती है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी हो सकती है, ये हम लोग देखिए आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, ये पानी का टेम्परेचर हो सकता है, या फिर ये किसी और चीज का भी टेम्परेचर हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आप लोगों ने अपना, जब आपको बुखार आता है तो आप लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर नोट करते हैं, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, उस बॉडी के टेम्परेचर के बाद अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, तो वो हमारा जो है वो टेम्परेचर मतलब बुखार, फीवर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा अपना टेम्परेचर हो गया। सिमिलरली मैंने आपको कहा कि आपका पानी जो है वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर है, आपके रूम टेम्परेचर पे है, तो वहाँ पे आप उसका मेजर कर सकते हैं। आपका वो आपने गर्म किया, बॉयल किया, आप उस टाइम उसका जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस आप वहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो पानी ठंडा हो जाएगा, तो उसका डिग्री ऑफ कोल्डनेस भी आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने न्यूज में देखा होगा कि जब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर सिटीज का क्या टेम्परेचर है, देखिए अभी गर्मियां बढ़ती जाएंगी, मौसम चेंज हो रहा है, हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट का भी हम लोग ले सकते हैं। अगर हम ऊष्मा को डिफाइन करें तो देखिए ऊष्मा जो है वो किसी भी चीज को जो है उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को वहां पे बेरी कर देती है। और अगर हम बात करें कि आपने कोई पानी, जैसे आपने कभी चाय बनाई होगी तो चाय बनाते वक्त आपने जो है वो वहां पे उसे ढक दिया, तो जब पानी बॉयल करने लगता है तो आपने कई बार देखा होगा कि वो जो बर्तन है जो उसके ऊपर आपने रखा होता है वो उठने लगता है। और इन सम केसेस अगर पानी ज़्यादा है, बॉयल ज़्यादा है, प्रेशर स्टीम का ज़्यादा है, इन दैट केस जो है वो जो आपका बर्तन है वो काफ़ी ऊपर तक उठ जाता है या फिर गिर भी जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है हीट की, ये है कि इसको यूज़ करके वी कैन डू द वर्क, और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे हम अपने बाकी कार्यों में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम है, ये हमारे कई जगह यूज होती है, जैसे कि स्टीम इंजन्स में होती है, आपकी जो हमारे ये प्रोजेक्ट्स होते हैं बिजली बनाने वाले, वहाँ पे भी जब हम लोग स्टीम के द्वारा जो है वो टरबाइन घुमाकर बिजली जो है वो जनरेट करते हैं, देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। और डे टू डे लाइफ में भी हम लोग तापीय ऊर्जा का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग जो हैं वो वर्क करके सॉरी हीट के द्वारा किसी तरह से वर्क वहाँ पे कर सकते हैं। कैन इट डू रिवर्स? हम मैकेनिकल ऊर्जा को क्या हीट ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप सोचिए, देखिए, क्या ऐसा होता है कि हम मैकेनिकल जो है आपका उसमें कई भी चीज़ें आ सकती हैं। और देयर आर इन, आप देखिएगा कि आप जो है जैसे गैस है, तो जब आप गैस जला रहे हैं तो वो जो गैस का जलाना है आपका, तो उससे आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, मगर वो जो गैस जल रही है वो भी तो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं गैस को किस पे, तापीय ऊर्जा में। इसी और उस तापीय ऊर्जा का जो उसका जो एक आपकी बन गई डिग्री बनी, उस डिग्री को यूज किया हमने आगे किसी कार्य करने के लिए। सिमिलरली हम, आप देखिए आपके हाथ हैं, दोनों हाथों को अगर आप बहुत तेजी से रब करेंगे, और सर्दियों में जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को रब करते हैं, उसमें से हीट पैदा होती है, उसे मुंह पे रखते हैं, कहीं जहां हमें बहुत ठंड फील हो रही है हम वहां रखते हैं। तो इट कैन बी कन्वर्टेड, ये आपका जो है हम किसी दूसरी ऊर्जा को जो है वो हीट ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने अभी अभी बात करी कि हम लोग स्टीम इंजन से जो है, स्टीम से जो है टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वहाँ पे तैयार करते हैं। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिसिटी से हीटर चला के जो है तापीय ऊर्जा बनाते हैं। तो ये चीज़ें हमने जब वर्क एंड एनर्जी पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंदर हमने यही पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मगर ये क्या करेगी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जो उनका आपका जो भी टोटल है, चाहे वो वेस्ट हुआ चाहे वो कन्वर्ट हुआ, मगर वो प्रॉपर जो टोटल है वो आपका वहाँ पे सेम रहता है। आपका जो है हीट एनर्जी जो है वो आपकी वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, वर्क एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि हम लोग उसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम जो है वो तापीय ऊर्जा से वर्क करवा सकते हैं और वर्क के द्वारा तापीय ऊर्जा को जनरेट कर सकते हैं। हम जो अगर बात करें कि आपका जो हीट है वो आपकी उसकी यूनिट क्या है, तो आपकी यूनिट जो है दैट इज़ द कैलोरी, और ये कैलोरी जो है दैट इज़ इक्वलेंट टू 4.2 जूल ऑफ वर्क। नेक्स्ट है टेम्परेचर, ताप। जैसे कि हम पहले ही आपको बता सके हैं कि वो ताप वो चीज़ है जिसके द्वारा हम ये बता पाते हैं कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसका टेम्परेचर देखेंगे एंड वी विल फाइंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, और उससे हमें ये पता लगेगा कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है। यहाँ पे अगर बड़े ध्यान देखने वाली बात है कि अगर हम दो बॉडीज जिनके टेम्परेचर में वेरिएशन है, कोई कम गर्म कोई ज़्यादा गर्म, कोई ठंडी कोई गर्म, कोई कम ठंडी कोई ज़्यादा ठंडी, किसी भी तरह से उनके टेम्परेचर में अगर वेरिएशन है, तो और उन टेम्परेचर वेरिएशन वालों को अगर हम लोग साथ साथ रख दें, तो व्हाट यू विल फाइंड, आपने देखा होगा आइसक्रीम आप जब खरीदते हैं रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं तो वो जो आपका रूम टेम्परेचर है उससे ठंडी होती है, मगर एज सून एज आप वो खाने लगते हैं अपना आइसक्रीम, तो वो धीरे धीरे उसकी हार्डनेस उतनी नहीं रहती है, वो मेल्ट होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो दोनों टेम्परेचर है, जो रूम का टेम्परेचर है और जो आपका आइसक्रीम का टेम्परेचर है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को जो है वो कंपनसेट करने लगते हैं। जो अगर जो भी आपका टेम्परेचर है तो वो टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ज़्यादा जहाँ जिसका टेम्परेचर है उससे जो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी है उसके लिए उसको, तो आपका गर्म बॉडी से जो है वो ठंडी बॉडी की तरफ को टेम्परेचर चलेगा, जिससे क्या होगा कि जो आपकी गर्म है वो आपकी ठंडी होती चली जाएगी और आपका जो ठंडी वाली है उसका टेम्परेचर जो है वो रेज होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ध्यान होगा तो आप देखिए घर में जब बच्चों को हमें दूध या चाय देनी होती है, मगर दूध या चाय तो हमने बॉयल करके दी, तो उसमें जब बॉइलिंग पॉइंट वाला इतनी गर्म चाय होती है तो वो बच्चों को नहीं दी जा सकती ताकि वो जल ना जाए, तो मदर्स क्या करती हैं उसी चाय को गिलास में डाल के ठंडे पानी की बाल्टी में घुमाते हैं या किसी बर्तन में घुमाएंगे ताकि वो जो है वहाँ की उसकी जो हॉटनेस है, जो उसका टेम्परेचर है, वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाए। तो होता क्या है, जब हम उसे हिलाते हैं पानी में गिलास को, तो जो गिलास की जो अब हीटनेस है वो पानी में चली जाती है और पानी की कूलनेस जो है वो गिलास पे आती रहती है, तो उसकी वजह से कुछ सेकेंड्स में या कुछ मिनट्स में जो है वो आपकी चाय ठंडी हो जाती है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ताप का मापन कैसे किया जाता है, देखिए अगर हम घरेलू की बात करते हैं तो घरेलू अवस्था में आपने खुद भी ऑब्जर्व किया हुआ है कि आपने थर्मोमीटर जो है घर में देखे होंगे, जब भी आपको बुखार आता होगा आपके पेरेंट्स ने, आपके सिबलिंग्स ने, ब्रदर सिस्टर्स ने आपके मुंह पे कई बार जो है वो थर्मोमीटर लगाया होगा जस्ट टू फाइंड कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना बड़ा है। तो आपका जो थर्मोमीटर है वो अलग अलग तरह के होते हैं। आपके थर्मोमीटर जो हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं उसे हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। इसके अलावा हम लोग लैब्स में भी यूज़ करते हैं, लैब में प्रैक्टिकल्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो वो आपके जो होते हैं लैब थर्मोमीटर होते हैं। इसी तरह से अलग अलग कार्यों के करने के लिए अलग अलग थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं, जस्ट टू नो द टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी। यहाँ पे हम लोग जिस पर्पज़ के लिए थर्मामीटर बनाते हैं उसी के हिसाब से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, और जो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हम ह्यूमंस के लिए कह रहे हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, जो लैब के लिए हो गया वो लेबोरेटरी थर्मामीटर है साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए, और जो थर्मामीटर जो है आपका मेट्रोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ए डे इज कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। मैंने एग्जांपल्स में आपको बताया था कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर से मेज़र कर सकते हैं, जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में तो उसमें आपको कितनी हीट देनी है उसका, और साथ में किसी भी पर्टिकुलर सिटी का इन्वायरमेंट का वातावरण का जो आपका टेम्परेचर है वो जानने के लिए जो थर्मामीटर होता है दैट इज नोन एज अ मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ऑल द थर्मामीटर्स जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। थर्मामीटर्स आपके मैनुअल हो सकते हैं और आपके साथ में डिजिटल हो सकते हैं। डिजिटल थर्मामीटर्स में आपको ध्यान से काउंट नहीं करना पड़ता, वहाँ पे अपने आप ही डिजिट आ जाते हैं और आप डिजिट देख के पता लगा लेंगे कि आपको कितना टेम्परेचर है, जबकि मैनुअल्स में आपको उसे प्रॉपरली रीड करना पड़ता है। ये आपका जीरो से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो भी टेम्परेचर है उसका वहाँ तक होते हैं। थर्मामीटर जो आपका फारेनहाइट में भी हो सकता है और सेल्सियस में भी हो सकता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 100-110 तक हम लोग लेते हैं, इसलिए उसका जो मेज़रमेंट है वो वहीं तक होता है, जबकि लैबोरेटरी के थर्मोमीटर्स का जो है टेम्परेचर जो स्केल है वो बड़ी हो सकती है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो देखिए एक मर्करी बल्ब होता है सबसे नीचे, जिसे मुंह में रखा जाता है या उस बॉडी के टच में रखा जाता है जिस बॉडी का जो है हमें टेम्परेचर, डिग्री ऑफ टेम्परेचर जो है वो नोट करनी होती है, और मरकरी जो कि एक वहाँ पे एलिमेंट उसमें डाला होता है वो अपने आप वहाँ पे रेज करता है, जितना टेम्परेचर होगा उतना उसका रेज होगा, और जितना उसका रेज होगा वो हम लोग वहाँ पे रीड करके ये पता लगा लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है। ये अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ ए थर्मोमीटर की, ये थर्मोमीटर बनता ही कैसे है, तो सबसे पहली बात है कि एक तो इसके लिए हमें एक ट्यूब चाहिए और उसके साथ हमें मरकरी चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी पहली बात हम ये बात करेंगे कि हमें मरकरी क्यों लेनी है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मरकरी हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मरकरी की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये किसी भी कंटेनर में अगर हम इसे रखते हैं तो ये किसी भी कंटेनर की दीवारों के साथ स्टिक नहीं करती है, ये रेज करेगी और अगर फॉल करेगी तो पूरा प्रॉपरली फॉल करेगी, उसका कोई भी ड्रॉपलेट जो है वो कहीं भी किसी भी दीवार के साथ नहीं लगता है। द सेकेंड थिंग, ये बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे ही हम लोगों ने बात करी कि मरकरी बल्ब को मुंह में जैसे हम रखते हैं तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के साथ वो एकदम से राइज करती है टिल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और फिर जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है वहाँ पे स्टॉप कर देती है, उससे हमें जो है वो टेम्परेचर पता लगता है। तो मरकरी को क्या किया जाता है कि आप जो है एक थिन वॉल बल्ब जो है अटैच किया जाता है एक थिंक वॉल्ड कैपिलरी के साथ। तो आपने देखा ही होगा कि बिल्कुल छोटी सी बारीक सी जो कैपलरी है वो आपके आगे उसके आगे जो है वो एक मरकरी बल्ब लगा दिया जाता है और उस कैपलरी में जो है वो मरकरी जो है वो फिल कर दी जाती है। फिर जब उसको भर दिया जाता है और भरने के बाद जो उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट्स है उसके ऊपर जो है वो वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है और उसे फिर सील कर दिया जाता है। वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एयर प्रेशर वहाँ पे ना रहे। जो मरकरी है वो सिंपल आपके बॉडी टेम्परेचर की वजह से राइज और फॉल हो। थर्मोमीटर जो है इस तरह से जो हम थर्मोमीटर भी बनाया है उसको मेज़र करने के लिए उसको मार्क किया जाता है और फिर उसको जो है कैलिब्रेशन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स जो है मार्क्ड रिस्पेक्टिवली और उसके बाद जो है वो उसे हीट और कोल्ड दोनों इन्वायरमेंट में टाइमली रखा जाता है ताकि वो उस चीज़ को वहाँ पे जो है उसका कंडीशनिंग विस्तार से हो सके। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू द लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट एंड डिवाइडिंग द स्पेस बिटवीन दीज टू मार्क्स इन इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन डिफरेंट स्केल्स आर डिवाइड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। सबसे पहले क्या है कि सबसे नीचे जो आपकी लोअर वैल्यू है उसको दिया जाता है, फिर उसके बाद सबसे ऊपर वाली वैल्यू दी जाएगी और नीचे बीच की वैल्यूज को इक्वली डिवाइड करके जो वो मेजरमेंट बना दिया जाता है ताकि जो आपका पॉइंट्स हैं वो रीड किए जा सके और उसमें हम जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसे वहाँ पे मेज़र किया जा सके। अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि थर्मोमीटर जो है वो आपका सेल्सियस स्केल में होता है या फारेनहाइट स्केल में होता है। अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो जो लोअर फिक्स पॉइंट है दैट इज़ 0 और जो आपका अपर फिक्स पॉइंट है दैट इज द 100 और फारेनहाइट में जो है दैट इज द लोअर पॉइंट इज मार्क्ड एज 32 जबकि आपका अपर फिक्स पॉइंट एज द 212। सेल्सियस में 0 से 100 तक है जबकि फारेनहाइट में 32 212 है और जो आपका स्पेस है उसको हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और आपका जो स्केल है वो वहाँ पे आ जाता है उस स्केल में। आप देख सकते हैं फिगर आपकी 14.3 में डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जो है वो वहां पे दी गई हैं। अगर हमें एक चीज पता है और हमें दूसरी में कन्वर्ट करना है तो यहां देखिए देयर आर थ्री स्केल्स और तीनों स्केल्स आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं वो फार्मूला यहाँ पे दिया है। सी अपॉन 100, सी मतलब सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180, दैट इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। तो अगर आपको कोई एक पता है, जैसे सेल्सियस की वैल्यू पता है तो आप उसे फारेनहाइट और इसमें केल्विन में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको केल्विन का पता है तो आप फारेनहाइट और सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, एंड सो विद द अदर्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। तो आप देखिए अभी अभी हम लोग विंटर्स से समर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपने देखा कि हीट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सूरज की गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, राइज इन टेम्परेचर। जब भी हम लोग किसी भी बॉडी को गर्म करेंगे तो वो उसका जो है टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा गर्म दिखेगी। जैसे कि आपको हमने एग्जाम्पल दिया, आप पानी को गर्म करते हैं तो आप पानी को जितनी देर गर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको वो गर्म फील होगा। आप ठंडा पानी रखेंगे गर्म होने के लिए, थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है। सिमिलरली आप अगर अपनी आयरन आप प्रेस करते हैं घर में, अपने कपड़ों को आयरन करते हैं, तो जब आप आयरन हीट करते हैं तो आपका जो आयरन का लेवल है, जो फ्रंट पार्ट होता है, वो हीट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग आयरन करते अपने कपड़ों की सल्वेटेज जो है वो दूर कर पाते हैं। तो वो जो है टेम्परेचर में राइज कर देता है हीटिंग जो है। द सेकेंड थिंग इज दैट इट चेंज ऑफ स्टेट, आपका अवस्था में परिवर्तन होता है। वेन हीट इज अप्लाई टू अ सब्सटेंट इन सॉलिड स्टेट इट्स टेम्परेचर राइजेज टिल इन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इट मे चेंज इन टू इट्स लिक्विड। हर मतलब कि आप देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए अगर हम और कुछ भी ना देखें तो आप बड़े उसमें देखिए कि आपने जो पानी है, पानी को जब आप बॉयल करने लगते हैं तो क्या होता है, वो उसमें गैसीय अवस्था में हो जाता है, स्टीम बन जाता है। सिमिलरली आपने अगर बर्फ़ को, बर्फ़ तो ठोस हो गई, पानी की ठोस अवस्था है, तो पानी की ठोस अवस्था को जब हम गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद जो है वो अपने आप पानी में यानी कि लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। इवन कि बर्फ को आप फ्रिज से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर में रख देंगे तब भी वो कुछ देर के बाद जो है वो पानी में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि फ्रिज के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में बहुत अंतर था। तो जो रूम टेम्परेचर है वो एक तरह से उसको उसने हीट किया, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो जो हीटिंग है वो आपकी अवस्था में परिवर्तन करती है, वो आपकी सॉलिड अवस्था को एक पॉइंट के बाद लिक्विड अवस्था में चेंज कर देती है, और उसके लिक्विड अवस्था को और गर्म किया जाए तो एक पॉइंट के बाद जो है वो आपका गैसीय अवस्था में परिवर्तित तो हो जाती है। द पॉइंट एट विच जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है उसे हम लोग जो है मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और द पॉइंट एट विच द लिक्विड पॉइंट चेंजेस इनटू द गैसी स्टेज, जो आपका लिक्विड स्टेज है वो गैसीय अवस्था में जब परिवर्तित होती है उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड है लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ अ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, एंड हीट दैट इज ट्रांसफॉर्म टू द सब्सटेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो जो हीट जिसकी वजह से जो आपका फ्यूजन होता है दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसी तरह से हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी थी, तो जो आपका जिस पॉइंट पे जाके आपका जो है वेपोराइजेशन जो है होता है, दैट हीट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वहां पे उस पॉइंट पे जाके जो है वो वेपोराइजेशन होता है। इट मे बी नोटेड दैट द वेपोराइजेशन मे टेक प्लेस इन टू डिफरेंट वेज। फर्स्ट, एवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, कि जो लिक्विड है उसके ऊपर वाली सतह से ही एवेपोरेशन हो रहा है, और फिर दूसरा होता है कि बॉइलिंग ऑफ द होल मास ऑफ द लिक्विड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड हो गया। तो देखिए, आपने जो हम अभी अभी बात कर रहे थे कि जो सूरज की तापीय ऊर्जा है वो आपका जो वाटर साइकिल है उसको चलाने में सहायक होता है, तो वो जो पानी को एवेपोरेट करता है, उसका जो वेपोराइजेशन होता है, वो सिर्फ जो सतही है, ऊपर सतह के ऊपर जो पानी है उसका एवेपोराइजेशन वहाँ पे होता है। जबकि अगर हम चाय के पानी की बात करते हैं या बॉइलिंग वाटर की बात करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस वो आपका एवेपोराइजेशन जो है वो आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। बोथ आर द डिफरेंट। इसी के साथ साथ आप देखिए कि फिगर नंबर 14.4 में चेंज ऑफ स्टेट्स किस तरह से करी हुई है, कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट के बाद सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वाइस वर्सा इसके उल्टे हम लोग जो हैं वो टेम्परेचर घटाकर जो गैसीय अवस्था को लिक्विड अवस्था में और लिक्विड अवस्था को सॉलिड अवस्था में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन, हियर इज द वाटर इज एग्जाम्पल। आप पानी को बॉइल करते हैं तो वो आपका गैस बन जाता है। गैस को आप स्टोर करें, कहीं ठंडा करें, कंडेंस करें, तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसे फ्रिज में रख देंगे तो वो बर्फ में, मतलब उसकी सॉलिड अवस्था में परिवर्तित तो हो जाता है। इसी तरह से थर्मल एक्सपेंशन, अगर ऊष्मीय प्रसार की हम बात करते हैं, तो आप कई बार देखेंगे कि कई चीजें जो है मेटल से जो कई चीजें बनी होती हैं वो आपकी जो है वो गर्म करने पे फैलती हैं, और इसके लिए आप घर पे भी कोई भी चीज़, घर पे अगर आप ना भी करना चाहें तो आप देखेंगे कि जो लोहार हैं या जो सुनार होते हैं वो अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा गर्म करते हैं और उनको हल्की हल्की चोट करते हैं और उनकी शेप चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है वो सॉलिड जो है वो थोड़ा सा नर्म हो जाता है, उसमें जो ऊष्मीय प्रसार है उसकी वजह से उसका जो है वो एक्सपेंशन होता है, तो आप उसमें वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और रूप में। यहाँ पे जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है दैट इज अ 14.5, देखिए, बॉल एंड ए रिंग एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट थर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या किया गया कि आप देखिए कोई एक रिंग लीजिए और उस रिंग में से आप जो है वो उस बॉल को निकालने की कोशिश करिए, तो उस केस में क्या होगा कि वो जब जनरल केसेस हैं, आपने बिना हीट किए जब आपने उसको करा तो आपका जो है वो वहाँ से क्रॉस हो जाएगा। अब सेकंड केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर बॉल को, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हम लोग रिंग को गर्म करें या हम बॉल को गर्म करें। बॉल को गर्म करेंगे तो आपका बॉल में एक्सपेंशन होगा, बॉल में एक्सपेंशन होने से बॉल का आपका सर्कल जो है बढ़ जाएगा तो वो रिंग में नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर हम बॉल को नहीं करते और रिंग को करते हैं तो रिंग के एक्सपेंशन होने से रिंग का आपका जो है वो स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा और एक्सपेंशन हो जाएगा, जिससे आपका बॉल जो है वो उसमें से क्रॉस हो सकता है। तो आप किसे एक्सपांड कर रहे हैं, आप किसे हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस पे भी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करेंगी। जो आपके जो भी है, हर एक मटीरियल, ऐसा नहीं है कि सब मटेरियल जो हैं वो एक ही तरह से एक्सपैंड करते हैं। कुछ गर्म होने पे बहुत जल्दी एक्सपैंड कर जाएंगे, कुछ जो है वो बहुत एक्सपैंड होने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसकी अपनी ऊष्मीय धारिकता होती है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो आप जब यहाँ पे देखिए, एक और है एग्जाम्पल इन्होंने ये चीज दिखाने के लिए कि आपके डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो है वो ऊष्मा का डिफरेंट प्रभाव आता है। तो यहाँ देखिए इन्होंने स्टील और एल्युमिनियम दोनों का ही लिया है और दोनों को जब उन्होंने गर्म किया किसी क्लैंप से, तो उन्होंने ये नोट किया कि जो एल्युमिनियम की लेयर है वो आउटवर्ड को एक्सपैंड होने लगी है, जिससे ये बता रहा है कि जो एल्युमिनियम है वो ऊष्मा के साथ जल्दी एक्सपैंड होता है एज कंपैरिजन टू द स्टील, और जिसकी वजह से वहाँ पे उसमें बैंडिंग होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो इट कैन बी सीन दैट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए मेटेलिक बार विल बी मोर फॉर ए लॉन्गर बार एंड आल्सो फॉर ए ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सेम बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमने उसमें कर रखा है, जो आपका अगर इंक्रीज आपका लेंथ जो डेल्टा एल है और आपका टेम्परेचर जो है आपका वो आपका डेल्टा टी है, इन दैट केस अल्फा जो है दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट फॉर द मटेरियल ऑफ द बार एंड इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर एक्सपेंसिविटी ऑफ द बार। लीनियर एक्सपेंसिविटी ऑफ ए मटीरियल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। मतलब कि एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर आपका जो एक यूनिट ओरिजिनल लेंथ में जो चेंज होता है दैट इज नोन एज अ लीनियर एक्सपेंसिविटी। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की तो दैट इज अ एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज पर केल्विन, और इसे अगर हम बात करें तो इट इज सेम एज पर डिग्री सेल्सियस इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जब हम लोग लेंथ की बात कर रहे थे, अगर आपका जो एक्सपेंशन था वो लेंथ में था तो दैट इज नोन एज द लीनियर एक्सपेंसिविटी, एंड अगर आपका जो चेंज है जो एक्सपेंशन है वो आपका पूरे पीस में सॉलिड में लेंथ के ब्रेथ और हाइट तीनों डायरेक्शंस में होता है देन देयर विल बी एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम एंड दैट इज नोन एज द वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी ऑफ ए मटीरियल एंड इट कैन बी डिफाइंड एज गामा इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा टी, द वैल्यू ऑफ कॉफिशियंट लीनियर एक्सपेंशन एंड द कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सेम मटीरियल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल नंबर 14.2 में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जो मटीरियल्स हैं जो खास आपके इंपॉर्टेंट मटीरियल्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसका जो है इन्होंने दे रखा है कि कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है और कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका सॉलिड इज वेरी स्मॉल देयरफॉर वी कैन नॉट सी एंड मेजर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स ईजली। अगर आप देखेंगे तो अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर केस तो हमें वो जो माइन्यूट सा है वो दिखता है, मगर इन जनरल वो इतना कम एक्सपेंशन होता है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। परंतु जब बात लिक्विड्स की आती है तो लिक्विड्स में ये बहुत जल्दी दिखता है एक्सपेंशन, और वी कैन सी गैसेस में ये एक्सपेंशन और भी ज़्यादा होता है। अभी तक आज हमने जो पढ़ा है दैट इज़ अ तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा क्या होती है, ताप और ऊष्मा में दोनों में क्या फर्क है, जो आपकी ऊष्मा है ऊष्मा के क्या प्रभाव होते हैं, और थर्मल एक्सपेंशन के बारे में आज हमने बात करी। धन्यवाद।